نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 284 سورة 3 سے سورة تکاثر تک لیسن نمبر 284 فرام سورة 3 ٹو سورة التکاثر سب سے پہلے سورت دیکھیں گے سورت 3 سورت 3 ترتیب کے اعتبار سے 95 یعنی 95 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام بالکل آغاز میں ہی والتین اس سے ہے اس کا معنی انجیر ہوتا ہے فک جس کو بولتے ہیں انگلش میں ایک رکوع 8 آیات 34 یعنی 34 کلمات ہیں اور 105 حروف ہیں 105 میں نے جب 105 کا لفظ بولا چھوٹی سی صورت ہے 105 حرف اور ہر حرف پر 10 نے کیا تو 105 کو 10 سے ضرب دیں تو صرف اس ایک صورت کو پڑھنے کی 150 نے کیا اس سے کم و بیش ہمیں مل سکتی ہیں اسی لیے قرآن پڑھنے والا بہت زیادہ غنی ہو جاتا ہے بے نیاز ہو جاتا ہے اس کو کسی چیز کا غم نہیں رہتا اگر دنیاوی کسی چیز میں کمی ہوتی بھی ہو اس کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے اس کی ساری کمیوں کو دور کرتا ہے سورۃ 3 مکی سورت ہے اور مکہ کے بالکل آغاز کی دور کی سورت ہے اس میں انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا اور انسان کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ تم بہترین مخلوق ہو اگر اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھو گے تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اور اس صورت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے 3 جلیل القدر پیغمبروں کی جائے ولادت یا ان سے منسوب جگہوں کی قسمیں کھا کر انسان کو اس حقیقت کا یقین دلایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایک ماسٹر پیس ہے ایک شاہکار ہے اور اللہ کی ذات نے اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے لیے بنایا تھا یہ الگ بات ہے کہ انسان شیطان کی باتوں میں آ جا کر کچھ اس قسم کے کام کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے رضا سے نہیں مشیت سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ میں ڈالے گا تو ہم سورت شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اگلی آیت وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی تیسری آیت وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم آیتیں 3 ہیں لیکن قسمیں 4 ہیں بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائیں یہ کیا ہیں اس کو ہم دیکھیں گے لیکن جواب قسم کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے عقل اور شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی نیابت کے لیے بھیجا دنیا میں اپنے پیغام کو واضح کرنے کے لیے بھیجا لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے ثم مرددنا اسفل سافلین پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پسترین حالت کی طرف بڑھاپا بھی مراد ہے اور عملی پستی یعنی کفر شرک فسق اور اس طرح کی ساری خرابیاں جس سے انسان ملوث ہو جاتا ہے وہ مراد ہے کیا سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے یعنی ان کی زندگی اس دنیا میں سے دوسری زندگی میں پلٹ جاتی ہے وہ بھی نہیں ختم ہوتی اسی طرح جیسے زندگی ختم نہیں ہوتی ان کا اجر ختم نہیں ہوگا اس دنیا میں جتنی ضرورت تھی ان کو اتنا اجر یہاں مل جاتا ہے اتنے فوائد اس دنیا میں دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جتنی لمبی زندگی ان کی وہاں ہونے والی ہے وہاں اس کے مطابق ان کو انعامات اور نعمتیں ملیں گی فما یکذبک بعد بالدین بس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا سزا کے معاملے میں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد دنیا میں اتنا کچھ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ان سب کو دیکھتے سنتے جانتے بوجھتے کوئی پھر جزا سزا کے معاملے کو جھٹلا سکتا ہے दिन रात अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने इंसान देखता है, तो क्या फिर उसको इस पे यकीन करना मुश्किल लगता है कि मरने के बाद, कयामत आने के बाद इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा? ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी दलील तो इस बात पे क्या है कि अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या नहीं है अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़ा हाकिम? क्या तुमने अल्लाह ताला को बेइंसाफ समझा कि एक अमल करके दुनिया से जाए और एक बेअमल जाए और दोनों मर के मट्टी हो जाए? नहीं, अल्लाह तो बेहतरीन हाकिम है, अल्लाह ताला तो बेहतरीन तरीके से फैसले करने वाला है, इसलिए वो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा ताकि अच्छे काम करने वालों को अच्छे बदले दे और बुरे काम करने वालों को बुरे बदले दे। ये है सूरह तीन, चंद आयात, पैगाम बहुत बड़ा कि तुम इस दुनिया में जो भेजे गए हो तो तुम्हें सिर्फ खाने पीने चरने चुगने के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़े मकसद के लिए भेजा गया। अब देखते हैं जरा इन कस्मों को एक साथ। व तीन, कसम है तीन की, तीन किसको कहते हैं? इंजीर। दूसरा साथ ही बस जैतून और जैतून। अब ये किसकी कसम है? पहली तफसीर क्या है कि वाकई इंजीर जो फेक की सूरत में इंजीर हम खाते हैं उसकी, और जैतून जो सब खाते हैं उसकी कसम है, ये पहली राय है। दूसरा कहते हैं कि नहीं, तीन और जैतून से मुराद वो इलाका है जहाँ ये पैदा होती हैं। अरब लोगों की आदत थी कि जब कोई चीज़ किसी इलाके में कसरत से होती तो उसी चीज़ को उसका नाम देते। ये ऐसे ही जैसे हमारे मुल्कों में बास चीज़ें मारूफ है ना, तो जिस तरह फैसलाबाद की लॉन और मुल्तान का हलवा और मुल्तान की कढ़ाई और सियालकोट की स्पोर्ट्स है ना, तो अरब लोग जिस इलाके में कोई चीज़ देखते थे उसको उसी से नाम देते थे। और ये बात ज़्यादा करीब है क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरी, व तूरी सीनी, तूरे सीना की कसम। तूरे सीना से मुराद वही पहाड़ जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया, इसको तूरे सीनीन भी कहा गया, वादिय सईना भी कहा गया और बुकतिम मुबारक भी कहा गया। ये सारे लफ्ज़ हम मुख्तलिफ़ मुकामात पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के किस्से में जो थे ये पढ़ चुके थे। दूसरी कसम इसकी है। तीसरी कसम, वह हाजल बलदिल अमीन, हाजा मैंने ये इसम इशारा है, कौन सा बलदिल अमीन, कौन सा शहर मक्का मुकरमा, मक्की सूरत ही, तो ऐसे कहा जा रहा है इस मक्का की कसम। बलदिल अमीन, बलद शहर को कहते हैं, अमीन अमन वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बी जल हाजल बलद आमीनन, अल्लाह इस घर को अमन वाला कर दे। और उनकी इस दुआ की कबूलियत का अमली नमूना हम जाके देख सकते हैं कि चारों तरफ अगर उस दौर में कत्लो गारत करी थी, खून रेजी थी, लूट मार के बाजार गर्म थे, इसके बावजूद मक्का मुकरमा जो था वो फितने और फसादात से भी महफूज था। किसी के बाप का कातिल वहाँ आ जाता तो उसको कुछ ना कहते, अगर जंगल में कोई चीता हिरन वगैरह कोई शिकार करता करता कोई उसके पीछे आ जाता, जो ही हरम की हदूद शुरू होती तो उसका पीछा छोड़ के चला जाता, यहाँ की घास काटनी मना है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की वजह से इस शहर को इतनी इज्जत अता फरमाई कि सारी दुनिया से लोग यहाँ जमा होते हैं और इतने बड़े रश के बावजूद भी लोगों को वहाँ किसी किस्म की कोई इस तरह की बड़ी मुश्किल नहीं होती कि जो इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में होनी चाहिए। कभी आपने गौर किया कि ये तीन आयात और चार कस्में क्या है? ऐसे एक खाने की चीज़, दूसरी भी खाने की चीज़, तीसरा एक पहाड़, चौथा एक शहर, क्या कोई रब्त बनता है इन कस्मों में? अल्लाह के इस कलाम को दिल जाता है मोतियों की तरह बंदा पिरोए। हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, ये सूरत मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को जुबानी याद ना हो, बीसियों बार पढ़ते हैं। इन तीन आयात में तीन बड़े पैगंबरों की जगहों की कसम खाकर तीन बड़े मजाहब, ज्यूइज्म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, यहूदी, नसरानी और मुसलमानों के तीन नातों से कसम खाई गई। कैसे? वह तीन ही बसून। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल लहम के जिस हिस्से में पैदा हुए थे वहाँ दुनिया का बेहतरीन इंजीर और जैतून पैदा होता है। ये पहली कसम हजरत ईसा के नाते से है। दूसरी, व तूरी सीनीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको तौरात मिली, हजरत ईसा को इंजील मिली, वहासल बलदिल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से कुरान के नजूल की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इस वक्त मौजूद तीन बड़े इल्हामी मज़ाहिब की कह सकते हैं कि उनकी मेमोरियल थिंग्स की, उनकी खास चीज़ों की कसम खाकर बता दिया कि लकद खलकना लिंसान फी अहसनी तकवीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन इतदाद से पैदा किया, शक्ल व सूरत पे पैदा किया। आप देखिए कि इंसान दूसरों से कितना अलग, हर इंसान जो दुनिया में आता है शक्ल से, अकल से, कद कामत से, जहनी कुवतों से, दिल से, रूहानियत से दूसरे तमाम जानवरों से फर्क है। तफसीर कुर्तुबी में इब्न अरबी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसे अजीम सिफात से मुत्तसिफ फरमाया और उसको दूसरों से इतना खूबसूरत कर दिया है कि कायनात की हर चीज़ उस इंसान को सर्व कर रही है। आप देखिए हर दिन सूरज निकलता है ना, कौन फायदा उठाता है उससे? इंसान, चांद, हवाएं, समंदर, पहाड़, दरिया, इंसान के लिए। इसकी एक दलील है, सिर्फ एक दिन सूरज ना निकले तो क्या होगा, कितने इंसान मर जाएंगे? हालांकि रोज हजारों इंसान मरते हैं और सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान जो इतना अहम है, उसको अल्लाह ने आसानी तकमीम दी, उसके अंदर तौहीद की खू डाली। अलस्तु बिरब्बिकुमुल आला कहकर अल्लाह ताला ने इंसान को अपने आगे झुकाने की बात की कि इंसान तुम्हें मैंने आपके लिए पैदा नहीं किया, तुम तरकीब के एतबार से भी बेहतरीन हो, तुम मकसद के एतबार से भी बेहतरीन हो, तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया पे अपने काम के लिए भेजा। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में हमारे सामने कैसे रखा, इस काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। खिलाफत का लफ्ज़ इंसान के नाम के साथ आना आसानी तकवीम है। आप देखिए कि दुनिया में जितनी मखलूकात हैं इंसान के सिवा कैसे पैदा किए गए हैं, मुंह नीचे झुके हुए हैं, घोड़े का सर देखिए नीचे, गधे का सर झुका हुआ है, बकरी का सर, गाय का, जितने कैटल्स आप देखे उनके सर नीचे झुके हुए हैं। परिंदे अपने हुस्न में इंतहाई खूबसूरत के देख के अकल दंग रह जाए, इसके बावजूद आप देखिए कि इंसान सीधा खड़ा होता है, सर ऊपर उठा सकता है, सर सामने कर सकता है, नीचे झुका सकता है। कोई जानवर एक कैफियत तो रख सकता है लेकिन तीनों नहीं रख सकते। कमोबेश इंसान को अल्लाह ताला ने कैसे रखा, हमारी आंखें देखें, हमारे कान देखें, हम इंसान अपने जिस्म के अंदर गौर करके देखें, वफी यानी फुसी को मफला तुबसीरों। सूरह ज़ारियात में हम पढ़ चुके, अल्लाह ताला कहते हैं लोगों तुम्हारी तो अपनी जात के अंदर बड़ी निशानी है, तुम गौर नहीं करते, तुम देखते नहीं हो खुद को, तुम अल्लाह का कितना शाहकार हो। आज अगर डॉक्टर्स कुरान पढ़ने के बाद डॉक्टर बने, या डॉक्टर्स का ताल्लुक कुरान से जोड़ दिया जाए, तो पूरी साइंस जो लेबॉरेटरीज की लेबॉरेटरीज और हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल्स इस्लाम के नूर से चमकने लगे। ये तो आज अल्लाह इन मुसलमानों को हिदायत दे जिन्होंने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। जो कुरान पढ़ जाते हैं वो साइंस के दुश्मन, जो साइंसदान है वो खुदा फरामोश, तो मुखलिफ दीन बन गए। कुरान पढ़ते हुए दिल की हालत होती है तो वो रोते धोते हैं, लेकिन उनको दुनिया में आगे बढ़ने की कोई समझ नहीं है। नतीजा क्या हुआ, जब मुसलमानों ने काम छोड़े तो उस जगह को अल्लाह ने गैर मुस्लिमों से पूरा कर दिया। आज वो रिसर्च करके कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, अगर उनके पास कुरान हो। अगर चांद पे जाने वाला शख्स मुसलमान हो गया था तो आप सोचिए कि क्या ऑपरेशन करता हुआ एक डॉक्टर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा। आप अपने इस पेट को खोल के तो देखें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सेटिंग, कभी आपने कभी सुना कि किसी का दिल बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ है? नहीं बचेगा, गुर्दे जो है वो पेट की बजाय वो कंधों में लग गए। कैसे अल्लाह ने तरकीब दी, अल्लाह इतदाल सिखाता है, अल्लाह तंजीम सिखाता है। अल्लाह तआला कहते हैं अगर तुमने आगे बढ़ना है तुम्हें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। जब तक तुम ये काम खुद नहीं करोगे अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ नहीं आएगी। अल्लाह ने इंसान को कितने चाव से पैदा किया, मैं जब इस जुमले को पढ़ती हूँ ना कि लकद खलकना लिंसान फी अहसनी तकवीम, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इसका तर्जमा करूँ कि इंसान मैंने तुझे बड़े चाव से पैदा किया, मैंने तुझे बड़े प्यार से पैदा किया। एक आध दिन पहले हमारे एक प्रोग्राम में एक नौश औरत आई, तो जब मैं गई तो सामना हुआ, मैंने उससे बात शुरू की, तो वो इतनी दुबली सी औरत थी, यानी मैं उसके शोल्डर्स देख रही थी, 8-10 साल की बच्ची के जितना उसका जिस्म था, और दुबली पतली, और मेरे साथ बात शुरू हो गई। उसे इंग्लिश आती थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो मेरी से बात हुई, वरना मुझे नौश आती नहीं है। तो कहने लगी कि मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ, یعنی مین اس کا یہ تھا کہ میں اسلام سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے سب سے پیار کرتی ہوں، میرے دل میں کچھ ایسی بات نہیں. 5-10 منٹ گزرے، ایسی بات ہوئی میرے نقاب پہ پوچھنے کی، تم نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے نا؟ تو میں نے دیکھا کوئی مرد نہیں تھا، میں نے تھوڑا سا کھول دیا. تو پھر اس نے بات کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا. گھر گئی تو نیچے، یہ ہمارے سٹرومن پروگرام میں یہ ہوا نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایک آدمی ہے تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے. قصہ مختصر، اس ماں سے بات ہوئی، پھر میں نے سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دوسری طرف کر کے اس کے بیٹے سے تھوڑی سی بات کی اسلام کے اوپر. یقین کریں کہ میں ان دونوں سے بات کرنے کے بعد جب گھر آئی، میں نے اپنے شوہر کو بتایا، میں ہچکیاں لے کے رو رہی تھی. میں نے کہا کچھ کریں کہ اللہ ان کو آگ سے بچا لے. اتنے ٹھنڈے دل کے، اتنی، مجھے ایسے لگا 10 سال کی بچی کو بھی جتنی سمجھ ہوگی نا، یہ وہ جتنی بے ضرر ہے اتنی بے ضرر وہ مجھے عورت لگی، اور اس کا بیٹا جوان تھا. لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا 10-12 سال کے بچے سے زیادہ اس کا بڑا ذہن نہیں ہے. لیکن ہم ان تک پہنچے ہی نہیں، ہم نے وہ مقصد کھو دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو صرف کپڑے پہننے، کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو خود کو اور دوسروں کو آگ سے بچانے کے لیے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا مسلمان کی نہیں، انسان کی بات ہے. سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہاں کہا کہ انسان کو احسن تقویم پہ دیا، کیا مقصد تھا اور کیا انسان نے اس کا حل کیا. کبھی اپنے جسم کو تو دیکھیے، کسی چیز کے اندر جو چیز جہاں ہونی چاہیے ہمارے جسم میں ویسے ہی ہے. جبلت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ہم بول سکتے ہیں، جانور بول نہیں سکتے. ہم لیٹ بھی سکتے، بیٹھ بھی سکتے، کھڑے بھی ہو سکتے. اتنا شاہکار انسان، تو نے کیا کیا اپنا؟ تو کن چیزوں میں کھو گیا؟ اس نفس کو تو نے کفر اور شرک میں ملوث کر کے رب سے دور کر لیا، سنتوں کی جگہ بدعات کو پیدا کر کے تو نے اپنے نبی سے تعلق توڑ لیا. تم نے اس کو نیکیوں کے اندر چور کرنے کے بجائے گناہوں میں ڈال دیا. شراب کے نشے میں دھت کوئی شخص دیکھے دل چاہتے پھوٹ پھوٹ کے روئے. کسی سڑک کے کنارے کیڑے کی طرح لیٹے ہوئے کسی ڈرگ یا مافیا کے کسی شکار انسان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا. تیری ماں نے تجھے اس لیے پیدا کیا، تیری ماں نے اس لیے نو ماں پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا کہ تو چرس اور افیون پیتا ہوا سڑکوں کے کنارے کوڑے کے ڈھیر پہ مرا ہوا ملے. یہ انسان، جانوروں کی طرح انسان دنیا میں آج جی رہے ہیں. کہیں اتنی گندگی، ایک ای میل مجھے کسی نے بھیجی، میری آنکھوں کے آگے آتی ہے، یقین کریں کہ میرا کھانے کو دل نہیں کرتا. اتنی بھوک، اتنی فلاس کہ کوڑا کے ڈھیر میں سے ایک طرف جانور بھی کھول کھول کے، کتے اور سور جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ بچے انسان وہ بھی کوڑے کو کھول کھول کے اندر سے کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ انسانیت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے فطرت کا وہ کریشن پلان سمجھ ہی نہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے لیکن ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد نہیں پتہ چلتا. اللہ پیچھے انبیاء کرام کی باتوں کی یا ان کے مقامات کی قسمیں کھا کے انسان کو بتاتا ہے کہ انسان تم اس دنیا میں 4 دن کے لیے آئے ہو، زیادہ دن نہیں رہو گے. تم سب سے اعلیٰ ہو، تم فرشتوں کی بات کرتے ہو، فرشتوں کے تو قدم روک دیے جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں انسان کو لے کے جایا جاتا ہے. اصل بات یہ کہ فرشتوں سے بھی مشکل ہے انسان بننا. اگر انسان احسن تقویم کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلے، لیکن انسان جب نہیں کرتا یہ کام تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے وہ منصب چھین لیتا ہے. اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے، تفسیر قرطبی میں اس کو نقل کیا گیا، پڑھ کے سنا دیتی ہوں. تاریخ کا واقعہ ہے، عیسیٰ بن موسیٰ ایک شخص تھے، تو یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے خاص لوگوں میں سے تھے، یعنی بڑے دور کا بندہ تھا. اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے. ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے کہ تم پر 3 طلاقیں ہیں اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو. ایسی کہہ دی بات، یعنی اس کے حسن کے سمے تعریف کی. اور آپ دیکھیں فلموں میں، گانوں میں اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ تم شاید زمین و آسمان کی ہر چیز سے خوبصورت ہو. خیر، کہتے ہیں کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے. یہ کہتے ہی بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی، کہنے لگی آپ نے مجھے طلاق دے دی، کیونکہ طلاق تو ہنسی دل لگی میں بھی ہو جاتی ہے، تو چاند تو میرے سے بہت خوبصورت ہے، مجھے تو اب طلاق ہوئی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی نہیں. अब इनको परेशानी लग गई कि बात तो बड़ी सीरियस हो गई है। मैंने मजाक में कहा, प्यार में कहा, लेकिन मेरी बीवी मुझ पे हराम हो गई। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। सुबह को खलीफा वक्त अबू जाफर मंसूर के पास हाजिर हुए और अपना किस्सा सुनाया कि अब मैं तो बहुत परेशान हूँ, इस तरह मैंने कह दिया। अब जरे बड़े शख्स थे, दरबार में रहते थे, इनके लिए पूरे शहर के उलमा कराम जो थे उनको जमा किया गया, फतवे दिए गए। सबने एक ही जवाब दिया कि नहीं, तलाक हो गई। क्योंकि हदीस में आता है कि तीन चीजें हंसी मजाक में भी हो जाती हैं, जिसमें तलाक, रुजू और निकाह है। खैर, जान से हसीन तो कोई हो ही नहीं सकता, जान से खूबसूरत ये बीवी नहीं, इसलिए तलाक हो गई। कहते हैं कि ये नहीं देना चाहते थे तलाक, वो कहते ना लेने के देने पड़ गए। अब वो तलाक कैसी थी, क्या थी, उसको एक तरफ कर दीजिए। सिर्फ वाक्या जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं कि एक आलिम खामोश रहे, सबकी बातें सुनते रहे, सब कह रहे थे तलाक हो गए। मंसूर खलीफा ने पूछा कि आप खामोश क्यों हैं। तब वो बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यहाँ तक पढ़ के रुक गए तो कहने लगे कि मैं फतवा देता हूँ कि तलाक नहीं हुई, क्योंकि चांद से ज्यादा खूबसूरत इंसान है। फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि सारी मखलूकात से इंसान खूबसूरत है, तो इन्होंने अगर गलत कहा, झूठ कहा, सच कहा, लेकिन हकीकत में इंसान जान से ज्यादा प्यारा है। और इस तरह फिर उनको इस मामले में रफा दफा किया गया। लेकिन हकीकत है, आप सोच के देखिए, लोग आज महबूब के चेहरे को चांद कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो इंसान है वो इंसान है। अल्लाह ने उसमें मार्फत रखी, लेकिन सुमर अदत ना हो उस वाला साफिरी। इस जुमले के भी दो मुख्तलिफ मानी है। एक तो वही है जो अभी तक हम कर रहे हैं कि अल्लाह ने उसको नेकियों के लिए पैदा किया, लेकिन वो शिर्क करके, कुफर करके जहन्नुम के घड़ों में जाता है। असफल साफिलीन से फिर मुराद होगा जहन्नुम में सबसे निचले दर्जे में रहने वाला शख्स। हम पीछे पढ़ चुके, कौन होंगे सबसे नीचे दर्जे में, किसी को कुरान की आयत याद आई? इन्नल मुनाफिकीन फिद दर की असफली मिन नार। छठे पारे का आखिरी रुकू है सूरत निसा के अंदर, सूरत निसा ही है गलिबन, पांचवें या छठे पारे का आखिरी बारह रुकू है कि जिसमें फरमाया कि बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दरगों में होंगे। यही हसबुल साफिलीन। दूसरा मफहूम भी किया गया, बाज कहते हैं कि आसनी तकवीम से मुराद है इंसान की जवानी, जौबन, खूबसूरती, हर चीज का जौबन है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ सुमरदत ना हो असफल साफिलीन, नीचे से नीचा, हर दिन चेहरे पे एक नई झुरी, हर दिन बालों में एक सफेद बाल, हर दिन कमर में झोल, घुटनों में दर्द, पाँव में सूजन, हाफजा गया। और जब इंसान दुनिया से जाता है, कूड़े का ढेर बना होता है, हड्डियों की मुट्ठी रह जाती है बिलाकर। कल तक कितना करता फिरता था, किसी को कुछ समझता ही नहीं था, कदम जमीन पे पड़ते थे जलजला आ जाता था। आज इतना दरमांदा हुआ कि सिर्फ बाथरूम तक जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। पहले जुबान चलती थी, इतनी चलती थी कि रुकती नहीं थी, और अब सिर्फ एक दूध का ग्लास मांगने के लिए सारे जिस्म की एनर्जी लगानी पड़ती है। इंसान को एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम दिन ब दिन कमजोरियों की तरफ जा रहे हो, एक साख से दूसरी साख। भी तो सूरह यासीन में भी हम पढ़ चुके कि अल्लाह ताला कहते हैं, सुम मनुनक्की सुहुफिल खल्की अफला तुबसिरून। हम तुम्हारी तख्लीक को उलट के रख देते हैं, तुम कल क्या थे अब क्या बन जाते हो, तो क्या तुम उस अल्लाह के आगे नहीं झुकते? इस जिंदगी का भरपूर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम्हें क्यों यकीन नहीं है कि तुमने हमेशा ऐसा नहीं रहना? आप देखिए, जितना यकीन अपनी मौत का और अपने बुढ़ापे का हॉस्पिटल्स में जाके आता है इंसान को, उतना कहीं और नहीं आ सकता। हमने भी तो तरी जाना है, हम में से कोई बैक ट्रैक कर सकता? अगर आप इस वक्त 25 साल के हैं तो क्या 20 साल के हो सकते हैं? 30 के हैं तो 25 के हो सकते हैं? सारी दुनिया की अपनी दौलत लौटा दें, हम पीछे नहीं जा सकते, जाना तो आगे है। तो फिर आगे की तैयारियां कर लो। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाकर नेक अमल करेंगे, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनका अजर ऐसा होगा कि वो कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? कि उनकी जवानी फिर नहीं आ जाएगी। अगर ये जो आखिरी मानी हम कर रहे थे असफल साफिलीन का बुढ़ापा, तो ईमान वालों को खुशखबरी दे दी गई कि जन्नत में जाके फिर जवान हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बुढ़िया नहीं होगी, मौत नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। तो मतलब ये है कि अगर दुनिया में अच्छे काम कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा बुढ़ापा वापस लौटा देगा। और अगर दूसरा मानी लीजिए असफल असाफिलीन का, तो मतलब क्या है कि अल्लाह जहन्नुम के दर के असफल में ईमान वालों को तो नहीं डालेगा। क्या अल्लाह ऐसे लोगों को ज़ाया कर देगा? नहीं, असल बात यह कि काम करने का करो, जो अल्लाह ने तुम्हें करने को कहा वो करो। लेकिन जब इंसान नफ्स की पैरवी में लगता है ना, ख्वाहिशात के पीछे लगता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से मुँह फेर लेता है, फिर रसूलों की तालीमात पीछे जाती हैं और हैवानों की सतह पे जीता है, वो हरकतें करता है सरेआम जो जानवर भी नहीं करते। आप देखिए कि जानवर भी मारता है ना, तो खाएगा शेर तो दूसरे शेर के बच्चे को नहीं खाता, वो किसी और को खाएगा। अगर बिल्ली है तो वो बिल्ली का बच्चा नहीं खाती, वो चूहे को खाएगी। लेकिन जब इंसान नीचे होता है ना, तो वो इंसानों को ही खाने लगता है, माँ बहनों की इज्जतें लूटने लगता है, अपने ही हाथों से अपने जैसे इंसानों को मार के उनके बच्चों को, यतीम और औरतों को बेवा करने लगता है। वो काम तो जानवर नहीं करते जो फिर इंसान करने लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं इन चीज़ों से बचोगे तो फिर फलहु मजरुन गैरु ममनून। इतनी खूबसूरत ये बात है ना कि ना खत्म होने वाला अजर। पीछे भी ये बात हमने की थी कि एक मिरर के आगे आप एक दूसरा मिरर रख दें बस, फिर देखेंगे मिरर्स की लाइन, एक बॉक्स दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, और ऐसे लगता है कि पूरी दीवार पे आईने ही आईने लगे हुए हैं। अल्लाह ईमान की वजह से नेकियां किए हुए लोगों की खूब नेकियों को इस तरह बढ़ाएगा कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। कैसे? जन्नत तक पहुँचा के रखेगा अल्लाह ताला उनको, पहले मौत के वक्त में। या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना, ए ईमान वाली रूह, चल अपने रब की तरफ और जी रहा रब्बी की रात, यतम मर्दिया, तेरा रब तुझसे राजी, तू उनसे राजी। फिर जब कब्रों से उठेंगे तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं उन पे, कोई उन पे गम नहीं। और जब जन्नत में कदम रखेंगे तो सलामुन कौलम मिन रब्बि रहीम, सलामती व कौलम मिन रब्बि रहीम, रब की तरफ से सलाम होगा। पर चंद दिन की मेहनतें कर लो, फिर फलहुम अजरुन गैरु ममनून। दिन में इंसान के ख्याल आता है कि जब मैं कुछ नेकी दुनिया में जो कर रहा हूँ तो पूरा अजर दुनिया में मिले। इमेजिन करिए, चलिए हमने जो नेकी की उसका सारा अजर दुनिया में मिल गया। आपने एक गज कपड़ा किसी को दिया, उसकी जगह 700 गज कल आपके घर के बाहर एक ट्रक में भेज दिया गया, क्या करेंगे उसके? आपने 1 किलो गोश्त सदके का दिया, 700 किलो गोश्त आपके घर के बाहर कोई छोड़ दे, संभालेंगे कहाँ? ये तो लेने के देने पड़ गए। थोड़ी सी जिंदगी में इतना मिल जाएगा तो हाल क्या होगा? इंजॉय नहीं करेंगे? अल्लाह ने कहा ये दुनिया थोड़ी है ना, इधर थोड़ा सा यहाँ ले लो। उस दुनिया में जहाँ हम भी फ़ाले दून रहना है, वहाँ गैरु ममनून, जिसको कहते हैं ना तुम्हारा राशन पानी वहाँ लग जाएगा, वहाँ तुम्हारी असल नेकियाँ जाएंगी। असल बात क्या है कि तुमने अगर वहाँ अपने आप को पहुँचा लिया, अल्लाह ताला तुम्हारा अजर ज़ाया नहीं करेगा। इसलिए हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के बाद किसी शख्स को वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। एक दफ़ा कोई जन्नत में चला जाए और फिर कहा चलो भाग जाओ, अब तुम्हारे पैसे पूरे हो गए, या जाओ जहन्नुम की कोई आप ज़रा आग सेक के आओ क्योंकि तुम्हारा फलां गुना निकल आया। नहीं, सब साफ करके, सब बेबाक करके कहा जाएगा अब जाओ, थोड़ी सी नेमतें ही मिल जाए। असल अल्लाह के लिए संभाल ले, कितना दुख होता है इसका अपोजिट सोचें। हमारे सारे अजर के खजाने इधर इस दुनिया में कहीं स्टोर किए होते और हमारे जाने का वक्त आ जाता, कितना रोना था। कितना रोगी होते जो लोग बहुत सारा छोड़ के हिजरतें कर जाते या निकाल दिए जाते या डिपोर्ट कर दिए जाते, उनको हसरत ही नहीं ख़त्म होती, जगह से ज़्यादा वहाँ की चीज़ें याद आती हैं। मोमिन इस दुनिया में रह के आखरत के लिए तैयारी करता है, इसीलिए फरमाया कि फ़मा युकज्जिबु का बात बिद्दीन, फिर क्या हो गया तुझको? कोई है ऐसा जो इतनी बातें सुन के भी जजा सजा के मामले को ना माने, ना सोचे ये कैसा होगा, क़यामत के दिन क्या होगा, ये सब कुछ कैसे होगा? क्या फिर भी मेहनत नहीं करना चाहता? फिर भी इस दुनिया के आराम और आसाइश को इतना बड़ा बना लेता है कि उसको अल्लाह से अजर की उम्मीद ही नहीं रहती? अलैसा अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सारे हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं? क्या वो जुल्म करेगा? दुनिया में किसी बादशाह से कोई उम्मीद कर सकता है कि बतलो इंसाफ का दामन न थामे, वो जुल्म सितम करे? लोग तो उससे नफरत करेंगे, बल्कि अगर मौका मिलेगा तो उसका तख्त ताज उठा के उसको पीछे रखेंगे और जेल में डाल देंगे। अल्लाह की ज़ात तो बेहतरीन फैसले करने वाली है, तो क्या तुम इतनी बड़ी ज़ात से किसी जुल्म की उम्मीद रखते हो? जुल्म दो तरह से होता है, एक यह कि हक वाले को उसका हक ना देना, बहुत बड़ा जुल्म है। मेहनत करके रात जाग के तैयारी की, बेहतरीन पेपर दिया, आप उसको नंबर ना दें, ये जुल्म है। लेकिन एक जुल्म की दूसरी बड़ी यूनिक किस्म है कि जिसका हक नहीं बनता उसको भी दे दो, ये तो आपने और ही ज्यादा लोगों को खुला कर दिया, जिन्होंने मेहनत की थी वो कहेंगे हम पागल ही थे जो मेहनत की, जब इनको वैसे मिला हमें भी मिल जाता। तो इस बात से पता चलता है कि अल्लाह ताला के पास दो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, दो गिरोह। आप देख रहे हैं मुसलसल कई सूरज में दो गिरोहों की बात आ रही है। पीछे हम पढ़ चुके अफनजुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून, सूरत कलम की आयत 35 और 36 थी, कि क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों जैसा कर देंगे, क्या हो गया तुमको, कैसे फैसले लगाते हो। फिर इसी तरह सूरह जासिया की आयत 21 में हम पढ़ चुके अम हसीबल्लज़ी नजतरफु सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, क्या बुराइयों का इर्तकाब करने वालों ने ये समझ रखा है कि हम इन्हें उन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान लाकर नेक अमल करते रहे। दोनों की जिंदगी और मौत क्या यकसां होगी। बहुत बुरे फैसले हैं, बड़े हुक्म बुरे हैं जो तुम लगाते हो, तो दुनिया की अदालत में ये नहीं हो सकता तो अल्लाह के पास कैसे ये सोच सकते हो। तो मान जाओ कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये यकीन रखना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि तुम में से जब कोई सूरतीन बत्तीन इवज जैतून पढ़े तो अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन पर पहुँच कर कहे बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, क्यों नहीं। यानी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं ना, क्या अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन नहीं, तो हम आगे से कहते हैं यस अल्लाह, क्यों नहीं, वाई नॉट। व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, और मैं इसमें गवाही देने वालों में से हूँ। ये ज़ईफ़ रिवायत है लेकिन बहरहाल रिवायत मौजूद है, इसमें कोई हुक्म वाली बात तो ऐसी नहीं है। तो ये था छोटा सा पैगाम सूरह तीन का, और अगर हमें समझ आ जाए तो हकीकत में हमारी ज़िंदगियों के रुख बदलना है। आप देखिए कि कितने दिन है ना हम इस दुनिया में, 4 दिन की दुनिया है, ख़त्म हो जानी है ना, तो खुद ही छोड़ दें इससे पहले कि छुड़ा ली जाए और हम उसका हक अदा ना कर सकें। तो ज़रूरत है इस बात की कि मकसद हयात को सामने रखा जाए, सब मिल के इस सूरत की तिलावत करें और तदब्बुर के अंदाज से गौर करते हुए, बिल्कुल ऐसा मजहूल अंदाज नहीं होना चाहिए, तफक्कुर छलके आपके लफ्ज़ों में से। शुरू कीजिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.